आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ की लागत वाले 13 किलोमीटर हिस्से का आज करेंगे उद्घाटन। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक करेंगे नमो भारत ट्रेन की सवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अयोध्या में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने परखी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां। कहा, महाकुंभ में सुरक्षा की है पूरी व्यवस्था। और प्रदेश में कोहरे के साथ शीतलहर का सिलसिला जारी। रेल और हवाई यातायात के साथ आम जनजीवन भी हुआ प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज साहिबाबाद और न्यू अशोक नगर के बीच दिल्ली गाजियाबाद मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ रुपए की लागत वाले 13 किलोमीटर के हिस्से का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री सुबह करीब 11 बजे साहिबाबाद आरटीएस स्टेशन से न्यू अशोक नगर आरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन की सवारी भी करेंगे। इस उद्घाटन के साथ दिल्ली और मेरठ के बीच यात्रा काफी आसान हो जाएगी। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के मद्देनजर गाजियाबाद यातायात पुलिस ने डायवर्जन प्लान जारी कर दिया है। अपर पुलिस उपायुक्त ट्रैफिक पीयूष कुमार सिंह ने रूट डायवर्जन के मद्देनजर लोगों से कार्यक्रम के समापन तक वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की अपील की है। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल अयोध्या का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विधानसभा क्षेत्र के ग्राम प्रधानों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। एक रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनता के पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और ग्राम प्रधानों से रणनीतिक विचार मंथन किया। श्री योगी आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय स्थित सभागार में बैठक कर चुनाव की जीत के लिए चक्रव्यूह रचना को अंतिम रूप देने में उनके साथ प्रदेश के 7 मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही, गिरीश यादव, मयंकेश्वर शरण सिंह, दयाशंकर मिश्र दयालु, सतीश मिश्रा और जेपीएस राठौर भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देते हुए कहा कि व्यवस्थित और समर्पित कार्ययोजना में हर हाल में जीत दिलाएगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
अयोध्या जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जन कल्याण के अनेक कार्य किए हैं, इसका असर मिल्कीपुर में भी दिखाई देगा।
दोनों सरकारों ने जन कल्याण के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए और नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो सके, इस दृष्टि से विशेष प्रयास किए हैं और उन प्रयासों का परिणाम आज सर्वत्र दिखाई देता है। अब मिल्कीपुर में भी खोजेंगे तो दिखाई देगा।
मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं से बैठक के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज के सभागार में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने महाकुंभ के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा, आश्रय स्थल और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर जानकारी हासिल की। मंडलायुक्त गौरव दयाल ने महाकुंभ के संबंध में अयोध्या में होने वाली तैयारियों को लेकर प्रस्तुतिकरण भी दिया। मुख्यमंत्री ने सभी तैयारियों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। ज्ञानवापी प्रकरण में कल वाराणसी के जिला जज की अदालत में प्रकरण से जुड़े सभी मामलों को एक ही अदालत में शामिल किए जाने को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने इसके लिए अगली तारीख 18 जनवरी तय की है। वादी पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला जज ने मामले में पक्षकार बनने वाले लोगों को अगली सुनवाई की तिथि तक ये बताने को कहा है कि किस आधार पर उनको मामले में पार्टी बनाया जाए। प्रदेश सरकार द्वारा पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से पराली के बदले गोवंश खाद योजना जलाई जा रही है। अभियान के दौरान प्रदेश में लगभग 2,90,208 कुंतल पराली एकत्र की गई और किसानों को इसके बदले 1,55,380 कुंतल गोवंश खाद वितरित की गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने के लिए कल प्रयागराज पहुंचे। महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि महाकुंभ को लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सभी विभागों के समन्वय से कार्य चल रहा है।
हम लोगों ने जो चीजें घूम के देखी और यह पाया कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इक्विपमेंट तथा जो मैन पावर है, इनमें काफी अच्छा समन्वय है और जो अधिकारी इन चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी हैं और हमारी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी है। इसको और कैसे बेहतर बनाया जाए इसके बारे में हम प्रयास कर रहे हैं।
महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गंगा और यमुना नदियों में बड़ी संख्या में जल पुलिस के जवानों को तैनात किया गया है। इन जवानों को अत्याधुनिक उपकरणों से भी लैस किया गया है। अंडर वाटर ड्रोन और सोनार सिस्टम जैसे उपकरणों के माध्यम से जल पुलिस संगम के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रही है। एक रिपोर्ट।
जल पुलिस योजना के तहत अब तक करीब 2500 जवान तटों की सुरक्षा के लिए तैनात कर दिए गए हैं। 3 जल पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। तटों पर सुरक्षा की मॉनिटरिंग जल पुलिस के कंट्रोल रूम से की जा रही है, जबकि पूरे मेला क्षेत्र में 17 जल पुलिस सब कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं। 8 किलोमीटर क्षेत्र में डीप वाटर बैरिकेडिंग की गई है। 2 फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन बनाए गए हैं जहां किसी भी अप्रिय घटना से बचाव के लिए जवानों की तैनाती की गई है। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह कल देर रात इटावा महोत्सव के प्रदर्शनी पांडाल में आयोजित चक्रव्यूह कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे। कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस दौरान संवाददाताओं से बातचीत करते हुए पर्यटन मंत्री ने प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ की चर्चा करते हुए कहा कि वहां श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सरकार हर प्रकार की व्यवस्था कर रही है।
AI तकनीक से लेके मल्टी लेयर सुरक्षा व्यवस्था, प्रदेश सरकार और भारत सरकार, अर्धसैनिक बल और प्रदेश के बल, कमांडो गैर कमांडो, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था है कि वहाँ आप देख रहे होंगे किसी भी तरह की सुरक्षा की मामला हो, स्वच्छता का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो या अन्य अन्य सुविधाओं और संसाधनों की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई कोर कसर हमारी भारत की सरकार, हमारी प्रदेश की सरकार के इस आयोजन को भव्यता दिव्यता अलौकिकता के साथ सुरक्षित कुंभ साथ जुड़ा हुआ कुंभ का आयोजन सफलतापूर्वक करने का काम करेगी।
महाकुंभ को और अन्य धार्मिक पर्वों को देखते हुए पर्यटन सुविधाओं को बढ़ाने के उद्देश्य से कल वाराणसी में 212 नए पेइंग गेस्ट हाउस के लाइसेंसों का वितरण किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से आयुक्त प्रेक्षागृह में आयोजित कार्यक्रम में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पेइंग गेस्ट हाउस संचालकों को इन लाइसेंसों का वितरण किया। प्रदेश के सभी जिलों में कोहरे के बीच कड़ाके की ठंड पड़ने के चलते लोगों का जनजीवन प्रभावित हो गया है। इसका असर रेल और हवाई यातायात पर भी पड़ा है। लखनऊ से चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने वाली कई उड़ानें कल देर से उड़ी। वहीं लखनऊ से दिल्ली जाने वाली 2 उड़ानों को निरस्त कर दिया गया। कोहरे और मौसम के चलते 17 उड़ानें प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में रात में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के कई जिलों में ठंड के चलते 8वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। लखनऊ में 11 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे। वहीं अयोध्या में सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है। लखनऊ में खेली जा रही हैंडबॉल की IHF ट्रॉफी मेंस यूथ और जूनियर कॉन्टिनेंटल फेज एशिया में कल खेले गए अंतिम मुकाबले में कजाकिस्तान की जूनियर टीम ने भारत को 40-31 गोल के अंतर से हरा दिया। इससे पहले भारत ने लीग मैच में बांग्लादेश को हराया। भारत ने 35 गोल किए जबकि बांग्लादेश की टीम केवल 29 गोल ही कर पाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के लगभग 4600 करोड़ की लागत वाले 13 किलोमीटर हिस्से का आज करेंगे उद्घाटन। साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर तक करेंगे नमो भारत ट्रेन की सवारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अयोध्या में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ की बैठक। कार्यकर्ताओं को दिए जीत के टिप्स। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार ने पढ़ी प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां। कहा महाकुंभ में सुरक्षा की है पूरी व्यवस्था। और प्रदेश में कोहरे के साथ शीत लहर का सिलसिला जारी। रेल और हवाई यातायात के साथ आम जनजीवन भी हुआ प्रभावित। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।